نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خلاصہ قرآن کے سلسلے میں آج دسویں پارے کا آخری رب کریں گے، آیت نمبر 63 سورۃ التوبہ سے. پیچھے سے غزوہ تبوک کا ہی سلسلہ تھا جس کی باتیں ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ کس طرح مشکل حالات لوگوں کو چھان کر الگ کر دیتے ہیں. کچھ لوگ دین کا کام اس وقت کرتے ہیں جب ان کا دل چاہتا ہے، جب وہ اویلیبل ہوتے ہیں، لیکن دین کا کام وہ ہے جب کہ اسلام کو آپ کی ضرورت ہو اور آپ اس وقت وہ کام کریں. کچھ ایسے ہی حالات تھے جب لوگ آپ سے آ کے رخصتیں مانگ رہے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سادہ لوہی یا اپنے دل کی نرمی کی وجہ سے اور اعلیٰ اخلاق یعنی گڈ مینر ہونے کی وجہ سے ہر ایک کو اسی طرح سے کہتے جا رہے تھے کہ چلو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھیے، آپ ان کو اتنی جلدی نہ معاف کریں، کیونکہ آپ کو ان کے بارے میں مزید غور و خوض کرنا چاہیے. اب اس کے بعد وہ لوگ جو مشکل حالات میں اپنی جان بچا کے گھروں میں بیٹھ گئے اور اسلام کو خطروں میں ڈال دیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علم یعلم انہ من یحادد اللہ ورسولہ فان لہ نار جہنم خالدا فیہا ذلک الخزی العظیم. اللہ اکبر. ایسے لگتا ہے کہ جیسے واقعی بہت زیادہ انسان ان آیات کو پڑھ کے اپنا محاسبہ کرنے لگتا ہے، کیا انہیں معلوم نہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتا ہے اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور یہ رسوائی ہے بہت بڑی. یہاں لفظ یحادد آیا ہے، یحادد اللہ، یحادد اللہ ہے ہا دال دال، چھری کو کہتے ہیں عربی میں حد، جیسے چھری کاٹ دیتی ہے نا، اسی طرح کچھ لوگ اللہ اور اس کے رسول سے کٹ جاتے ہیں، اور اصل میں یہاں منافقین کی کہانی ہے. اور چھپاتے تو تھے لیکن چھپتا کوئی نہیں تھا، ان کے چہروں سے، ان کے فیس ایکشن سے پتہ چل جاتا تھا. کیسے؟ یخزر المنافقون ان تنزل علیہم سورہ. یہ منافق ڈر رہے ہیں کہ کہیں مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت نازل نہ ہو جائے جو ان کے دلوں کے بھید کھول کر رکھ دے. جو دل میں چور ہوتا ہے نا، پھر وہ انسان کو دکھتا ہے. یخزر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم. ہائی لائٹ کر لیجیے اس آیت کو، اور خود سے ایک سوال پوچھیے اس آیت کی روشنی میں کہ قرآن کی محفل میں میرے دل کی کیا حالت ہوتی ہے. دھڑکا لگا ہوتا ہے، کوئی آج سن کے خوف آنے لگتا ہے کہ ارے یہ تو میری باتیں ہو رہی ہیں، یا پھر دل مطمئن ہوتا ہے. لیکن منافق جو دلوں میں کھوٹ رکھ کے آتے تھے، ان کو خوف کیا ہوتا تھا کہ کہیں مسلمانوں پر کوئی ایسی آیت، کوئی ایسی صورت نازل نہ ہو جائے جو ان کے دلوں کے بھید کھول دے. ہوتا کیا تھا، پیٹھ پیچھے بیٹھ کے باتیں کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت کرتے تھے، اسلام کی بھی کرتے تھے. اب جب محفل میں آتے تھے تو خوف یہ ہوتا تھا کہ کہیں اس نے کسی کو بتا نہ دیا ہو. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ اپنا دکھ سکھ کریں، بالفرض آپ اپنی ساس کی برائی اپنی کزن سے کریں، دکھ سکھ کرتے ہوئے آپ نے کر دی، رو دھو لیا، بات کر لیا. اب جو ہی آپ اپنی اس کزن اور اپنی ساس کو ایک ساتھ دیکھیں گے تو آپ کو خوف آئے گا، کیا ہائے کہیں یہ میری ساس کو بتا نہ دے یہ میں نے بات کی ہے. اور اگر آپ نے کی کوئی نہیں تو جہاں کوئی مرضی بیٹھے. بالکل جب انسان دل کا کھرا ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت ہوتی ہے، تو اس کو پرواہ کوئی نہیں ہوتی، بلکہ وہ اور خوشی سے اللہ کی باتیں سنتا ہے کہ اللہ کی باتیں جو ہیں وہ صحیح ہیں. لیکن جس نے اللہ اور اس کے دین کو کھیل تماشا بنایا ہوتا ہے، اس کو پھر خوف ہی لگا ہوتا ہے. اور بعض لوگ صرف اس لیے اللہ کے کلام کی مجلسوں میں نہیں آتے کہ بھئی یہاں باتیں بڑی سخت ہوتی ہیں، نہیں پھر تو ہم مس فٹ فیل کرنے لگتے ہیں. تو اصل میں وہ آپ کی اپنی باتیں ہوتی ہیں، اللہ کی وہ باتیں نہیں ہوتی. قل استہزئوا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے کہو اے نبی اور مذاق اڑا لو، کرو جتنی باتیں اللہ کے دین کے خلاف کرتے ہو، کھیل بنا لو حدیثوں کا، اللہ اس چیز کو کھول دینے والا ہے جس کے کھل جانے سے تم ڈرتے ہو. یاد رکھیے سچ کبھی نہیں چھپتا، آپ اپنے دل میں جس کے لیے جو رکھتے ہیں اس کو کھل جائے گا. اللہ اور اس کے دین کے ساتھ بھی ہمارا جو معاملہ ہوتا ہے لوگوں سے بھی نہیں چھپتا، اللہ اور اس کے رسول سے کہاں چھپے گا، اللہ تو اس کو کھول دینے والا ہے. اگر ان سے پوچھو کہ تم کیا باتیں کر رہے تھے، یہ ان کی محفلوں کی طرف اشارہ ہے، جو ٹھٹھے بازیاں کرتے تھے اور محفلوں میں راستوں میں بیٹھ کے یہ باتیں کرتے تھے کہ چلے گئے ہیں جی، نہ کوئی تیاری ہے نہ کچھ ہے، کام کرنے گئے ہیں، یہ دیکھو ذرا رومیوں کو مارنے گئے ہیں. اصل میں یہ ان کی پبلک ٹاکس ہیں اور ان کی پرائیویٹ ٹاکس ہیں جو ان کے گھروں میں بیٹھ کے ہوتی ہیں. ہم سبھی ذرا غور کر کے دیکھیں، جب ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم کیا باتیں کرتے ہیں. سب سے زیادہ انسان اس وقت کھلتا ہے
जब वो अपने लोगों में बैठा होता है, अल्लाह ताला कहते हैं इनसे को और बातें करो और मजाक करो, अल्लाह खोल के रख देगा जो तुम करते हो। अगर इनसे पूछो तुम क्या बातें कर रहे थे तो झट से कह देंगे हम तो हंसी मजाक और दिल लगी कर रहे थे। नहीं, वी वाज जस्ट जोकिंग। अच्छा, इनसे कहो अबिल्लाहि वआयातिहि वरसूलिहि, क्या तुम अल्लाह और उसकी आयतों और उसके रसूल से हंसी मजाक करते हो? यानी तुम्हें खेल मजाक लगा तो सिर्फ अल्लाह का दीन लगा, इसी की बातें करते हो और इसी को तुमने खेल तमाशा बना लिया। और इससे एक और मफहूम भी है कि अल्लाह के दीन को खेल तमाशा समझते हो। इसमें भी तुम्हें फ़न चाहिए, इसमें भी ग्लैमर चाहिए, तो अल्लाह और उसकी आयतों और उसके नबी के साथ जो रसूल करेगा के साथ जो मजाक करेगा उसका हाल क्या होगा? ऐसे शख्स को अल्लाह ताला हिदायत से दूर कर देगा। याद रखिए, अल्लाह का मामला हमारे साथ हमारे दिलों के साथ है। हमारे जैसे दिल होते हैं, हम अपने दिलों से जो काम करवाते हैं अल्लाह ताला वही काम हमसे करवाता है। अल्लाह ताला कहते हैं अब इनसे कहो उजर न तराशो, तुमने ईमान लाने के बाद कुफर किया है, अगर हमने तुम में से एक गिरोह को माफ कर भी दिया तो दूसरे गिरोह को तो हम जरूर सजा देंगे, क्योंकि बिअन्नहुम कानू मुजरिमीन, क्योंकि वो मुजरिम है। इसके बाद वाली आयतें बहुत अहम है। इसमें अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरत तरीके से मोमिन और मुनाफिक का तकाबुल किया। यहाँ आयत 67 में मुनाफिकीन के कुछ हालात हैं। इसको सुनते वक्त किसी दूसरे को नहीं सोचना, ना माँ को, ना बहन को, ना खाला, ना फूफी, ना ससुराली रिश्तों को कि हाँ हाँ मुझे लगता है वो तो बिल्कुल ऐसी है। सोचना है तो खुद को सोच लें। और इसके बाद आयत 71 में इंशाल्लाह मोमिनीन के किस्से आएंगे। फरमाया अब अल मुनाफिकून वल मुनाफिकात बादुहुम मिन बाद, मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें सब एक दूसरे के हमरंग हैं। सब का एक ही रंग है, सब माशरे के रंग में रंगे हुए हैं। इसको हाईलाइट कर लीजिए। मुनाफिक होता कौन है जो अपना रंग छोड़ के वक्त और माशरे के रंग में रंगा जाता है? जैसा देश वैसा भेस। देख लेते हैं अपने आप को, क्या मैं मुनाफिक तो नहीं? क्योंकि यह आयत हम अपने लिए पढ़ रहे हैं, किसी दूसरे के लिए नहीं पढ़ रहे। क्या मेरे ऊपर माहौल का रंग चढ़ता? क्या मैं सऊदी अरब और अमेरिका के हालात और हाल हुलिये में फ़र्क महसूस करती हूँ? क्या मस्जिद के रूप और पार्टी के रूप में मेरे फ़र्क होता है? कपड़ों का फ़र्क हो सकता है, आप अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, लेकिन यहाँ बात सिर्फ कपड़ों की नहीं हो रही, हाल हुलिये की, असिमिलेट होना, ये जो लफ्ज़ है ना उनके हम रंग हैं। आज तो इसको एक पूरा नाम दे दिया, बड़ा मारूफ नारा है अमेरिका में, असिमिलेट हो जाओ। क्या मतलब है? इन सोसाइटीज़ में आते हो इन जैसे हो जाओ। क्यों अपने आप को बदलते हो, क्यों रंग अलग रखते हो? फिर तुम प्रोमिनेंट हो जाओगे कैसे? अगर आपने इस्लामिक अटायर इस्तेमाल कर ली, अगर आप अपने हाल हुलिये से मुसलमान लगी तो अब अलग होंगी। इसके बरक्स आप देखिए कि दूसरी तरफ लोग नुमाया होने के लिए बाल कभी आधे सर के काट लेते हैं, कभी खोल लेते हैं, कभी लाल पीले रंग बाल कर लेते हैं, कभी खट्टे पीले करते हैं, क्या कि लोग हमें देखें। लोग पैंट फाड़ लेते हैं, आप भी फाड़ लेंगे। लोग कहते हैं एक बाजू काट के उतार के फेंक दो, हम भी उतार लेंगे। क्यों? कि जो सब कर रहे हैं। लोग प्रोमिनेंट होने के लिए उल्टी बाजियाँ लगाते हैं। तो अगर इस्लाम का हाल हुलिया रखते हुए या अल्लाह का बंदा बनते हुए हमें कोई शर्म आती है तो ये बहुत बड़ी खतरे की बात है कि एक जरासीम हमारे जिस्म में दाखिल हो चुका है। दूसरा इनका काम क्या है? यामुरून बिल मुनकर व यनहून अनिल मारूफ, बुराई का हुक्म देते हैं और भलाई से मना करते हैं। सोचिए, सुबह शाम हम इस चीज़ के इश्तिहार तो नहीं बने रहते, वो देखा फलां फिल्म कितनी अच्छी आई है, वो फलां हीरो को देखा था, फलां गाना सुना, और हमारी इन बातों पे दूसरे भी मजबूर हो जाते हैं कि लाओ हम भी देख लें। बस दफ़ा हम ऐसे पब्लिसिटी कर रहे होते हैं फिल्मों ड्रामों और ऐसी मैगजीन्स की और सेल के साइंस की और ऐसे कपड़ों की कि जैसे शायद हमें उस वहाँ से कुछ कमीशन मिलता है। और इसके बरक्स जब मारूफ की बात आए तो हम कहते हैं कौन किसी को के खाम खा बुरा बने, सबको पता है इधर क्लास होती है, खुद ही आ जाएंगे। अच्छा भला मौका भी होता है नेकी का, लेकिन हम कर नहीं पाते। और अगली अलामत के वक बिदून दिया हम, और अपने हाथ खैर से रोके रखते हैं। खैर का लफ्ज़ समझ लीजिए, किससे हाथ रुकता है खैर से? खैर दो तरह की होती है, एक तो खैर है नेकी का मौका आया, मैं नहीं करती, हाँ मैं क्यों करूँ, और कोई कर लेगा। खैर के कितने मौके इंसान की ज़िंदगी में आते हैं और उसको वो लखलोट होता हुआ छोड़ देता है। हम देखिए कि हम अच्छा भला एक मौका देख रहे होते हैं कि मैं ये नेकी कर सकती हूँ, लेकिन हम कहते हैं मैं नहीं करती, नहीं फिर मैं थक जाऊँगी, फिर मेरे साथ ये मामला हो जाएगा, मुझे ये मुश्किल होगा। हम किसी दूसरे को दीन की तरफ बुलाने के लिए थोड़ी सी कोशिश कर सकते हैं, हम अपने घर में कोई काम कर सकते हैं, हम प्रोग्राम रख सकते हैं, हम मस्जिद में कहीं जा रहे हैं तो साथ दूसरे को ले जा सकते हैं, हमारी गाड़ी में जगह है, हम दूसरे को बुला सकते हैं, ये सारे खैर के काम है ना, लेकिन हम नहीं करते। हम दूसरे का कोई काम कर दें कि लाओ भाई उसको भी इस काम में थोड़ी सी मदद कर दूँ, शायद इसका दिल अल्लाह ताला के दीन की तरफ आ जाए, लेकिन हम नहीं करते। दूसरे लफ्ज़ों में आप कह लें कि मुनाफिक कौन होता है? जो नेकियों के मौके को खो देता है। उसकी ज़िंदगी में कितने मौके आते हैं, आओ नेकी का काम करो, लेकिन वो कहता नहीं, मैं नहीं अभी कर रहा, और नहीं करेगा तो अगला दिन और मुश्किल होगा, और एक काम करेंगे तो दूसरा काम और आसान होगा। इसी तरह लफ्ज़ खैर जो है ना, ये माल के लिए आता है। सूरह अलादियात में आता है, इन्नल इंसान लिखुब्बिल खैर इला शदीद, कि इंसान माल की मोहब्बत में बड़ा शदीद है। तो खैर कहाँ, इंसान खैर से हाथ कहाँ रोकता है, माल अल्लाह के रास्ते में देने से रोक लेता है। जितना उसको फिक्र अल्लाह के रास्ते में माल देते हुए होता है, उतना हो सकता है उसको किसी फन प्लेक्स का टिकट खरीदते हुए नहीं होगा, उसको हो सकता है कि खाना खरीदते हुए नहीं होगा। और मैंने एक चीज़ महसूस की है, शुक्र है अल्लाह का कि मैं खुद भी पाकिस्तानी हूँ, और मुझे इसमें बड़ी खुशी भी होती है कि अल्लाह ताला ने हमें इतनी अच्छी जगह पे पैदा किया कि वो मुल्क जो बना ही इस्लाम के नाम पे था। लेकिन अगर आप गौर करके देखें ना, तो एक कल्चर हमारी, एक हमारी कल्चरल बात है, और वो क्या है कि हम खाना खरीदते, खाना पकाते हुए बहुत खोल के हाथ खर्च करते हैं। हमने किसी पे भी पैसा लगाना हो, यानी आप कह लीजिए कि हमारे कल्चर में खातर मदारत बहुत है, मेहमान आएगा, चार सालन बनाएंगे, चाय बनाएंगे, ये करेंगे, खुशी खुशी करते हैं, खिलाते हैं, फिर ये एक बहुत अच्छी बात है, ये बुरी नहीं है, मैं कह रही ये बहुत अच्छी बात है कि अल्लाह के लिए अगर आप किसी को खिलाएं या मसीला रहमी के लिए खिलाएं। हम कपड़ों पे भी बहुत खर्च करते हैं, हमारी शादियों पे एक एक जोड़ा बड़ा बन जाता है। हम लोग नहीं खर्च करते, दो तीन चीज़ों पे नहीं खर्च करते, जो मेरा एक मुशाहिदा है, वल्लाहु आलम सही है कि नहीं। नंबर एक, हम क्लिनिंग पर खर्च नहीं करते। हम लोगों का कल्चर क्या है कि हम कहते हैं कि नहीं, वो जो मशीन, वो जो कपड़ा साफ़ करने वाला ना, वो 6 महीने पुराना ही ठीक है। बाज़ लोगों के कपड़े सफाई करने वाले इतने गंदे और बदबूदार होते हैं कि यकीन करें, मैं कहना नहीं चाह रही मेरे साथ ऐसा कहाँ हुआ, लेकिन मेरे हाथ को वो कपड़ा लगा और उसके बाद मुझे अपने हाथ से इतनी बू आई कि आखिर मुझे फिर आप किसी एक लोशन के साथ अपना हाथ धोना पड़ा कि मुझे स्मेल आ रही थी, और मैं सोच रही थी इससे सफाई होगी, जिसमें अपने अंदर से सड़ांध आ रही होता कि लोग गीला कपड़ा अलमारी में रख देते हैं, उसी में बू हो जाती है। हम क्लिनिंग पर नहीं लगा पाते समटाइम। और दूसरा ये कि हम दीन पे नहीं खर्च करते, और वो दीन पे खर्च करना जो हमारी ज़ात से मुतल्लिक हो। हमें जोश आएगा, हम लाखों का चंदा भी दे देते हैं, हम जेवरात भी दे देते हैं, लेकिन जिस चीज़ से हमें खुद खैर मिलती है, हम उस पर नहीं खर्च करते। ये कल्चरल इशू है। अल्लाह ताला ने ईमान को परखने का और निफाक को देखने का एक तरीका बता दिया कि देखो कि तुम अल्लाह के रास्तों में कैसे खर्च करते हो। बाज़ दफ़ा इंसान लाखों खर्च करता है, लेकिन जिस चीज़ से फ़ायदा उठाता है उस चीज़ पर भी खर्च नहीं कर पाता। अल्लाह ताला कहते हैं कि इनका हाल क्या, नसुल्लाह फनसियहुम, ये अल्लाह को भूल गए हैं तो अल्लाह ने भी इनको भुला दिया, चलो तुम्हें चाह नहीं तो हमें राह नहीं। हमारे यहाँ एक बहुत ही मारूफ जुमला है कि दिल को दिल से राह होती है। इस जुमले पे लिख ले, बंदे को अल्लाह ताला के साथ निस्बत वैसी है, यानी अल्लाह को बंदे के साथ वैसा ही ताल्लुक होता है जैसा बंदे का अल्लाह ताला के साथ होता है। आज अगर हम अल्लाह ताला से ज़रा सा उखड़े उखड़े रहते हैं ना, यकीन कीजिए आज मरिए कल दूसरा दिन वाली कैफियत हो जाएगी। अल्लाह को कोई परवाह नहीं रहती। अल्लाह कहते हैं तुम रूठे हम छूटे, जान छूटी, चलो रूठे हो घर बैठे रहो, हर वक्त की तुम्हारी दावतें पका पका के हम भी थक गए हैं। कभी कभी ऐसे लोग होते हैं ना जो रूठ जाएं तो आप कहते हैं शुक्र है कुछ दिन से सुकून लगा हुआ है। अल्लाह का मामला हमारे साथ बहुत सीरियस मामला है। आज मैं अल्लाह को भूलूंगी, कल अल्लाह मुझे भूल जाएगा, और मैं भूल गई, अल्लाह का क्या बिगड़ना है। लेकिन खुदा ना खास्ता अल्लाह हमें भुला दे तो फिर आप सोचिए क्या होगा। अल्लाह ने भी इनको भुला दिया, दिल पे चोट पड़नी चाहिए इस बात को सुनकर कि कहीं अल्लाह ने मुझे भुलाया हुआ तो नहीं है। सहाबा इकराम का हाल क्या था कि अगर कुछ दिन तक उनको बीमारी ना आती, को परेशानी ना आती, तो कहते लोगो अल्लाह ने तुम्हें भुला दिया है, कुछ तुमने गलती की है कि अल्लाह तुम्हें नेमते ही देता जा रहा है। तो अल्लाह के याद करने के कई तरीके होते हैं, और अल्लाह कैसे भुलाता है एक और समझ लें बात। आगे जाके सूरत अल-हशर में भी ये बात आएगी इंशाल्लाह दोबारा, कि जब हम अल्लाह को भूलते हैं ना तो अल्लाह हमें हमारी जानें भुला देता है। आज आप देखिए कि हम जब अल्लाह को भूलते हैं, खुदा फरामोश होता है ना, वो खुद फरामोश भी हो जाता है। कैसे, ना अपने सोने का आराम है, ना खाने का आराम है। आज देखिए मादा परस्ती ने दुनिया को क्या दिया, अपना वक्त हमने कहाँ लगा दिया, हमने अपनी सेहत कहाँ लगा दी। कई लोग मुसलसल जॉब्स करते हैं, कई लोग नाइट शिफ्ट्स कर करके अपनी नींद ख़राब करते हैं। ऐसी दुखी बहन एक ने कहा, पिछले 12 साल से गालिबा मेरे शौहर जो हैं वो नाइट शिफ्ट करते हैं, और मुझे अपने शौहर के साथ सोने का मौका ही नहीं मिलता। वीकेंड पे भी है, एक दिन शौहर काम कर रहे हैं तो बीवी नहीं, ये काम कहानी है। मियाँ बीवी आपस में एक वक्त में घर में नहीं जमा होते, बाप बच्चों की मुलाकात नहीं होती, क्या ये भुलाने वाली कैफियत नहीं। हम माल कमाने के लिए क्या करते हैं, आप देख लीजिए हमारे घर के खाने, बासी खाना खाओ, क्या जी कि हम काम पे, हमारे बच्चे रो रहे हैं, क्या करें जी कि हम काम पे गए। क्या फितरत से रस्सा कशी करके इंसान को मिला तो क्या मिला। बाज दफ़ा हम दूसरों के बच्चे पालने की जॉब करते हैं और अपने बच्चे हम दूसरों को दे के काम कर रहे होते हैं। याद रखिए ہمارا جسم، ہمارا روح، ہمیں خوراک ملے گی، ہمیں سکون ملے گا تو اللہ کی بات مان کے ملے گا، ڈالر، کرون اور پاؤنڈز آپ کو نہیں کھلائیں گے۔ فطرت کے ساتھ جیئے، اللہ نے جو ذمہ داریاں آپ کو دی ہیں اس کو نبھائیے، پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں کتنی برکت ڈالتا۔ پھر اس کے بعد فرمائے ان المنافقین هم الفاسقون، اور منافق ہی فاسق ہے، کون سا فسق؟ کھلے عام پھر گناہ کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا۔ اب دیکھیے حیا کیسے رخصت ہوتی ہے نا، جیسے کسی کے سر سے چادر ایک دم نہیں سرکتی نا، پہلے ذرا سے بال کھلتے ہیں، پھر کندھوں پہ آتی ہے، پھر شولڈرز پر، شولڈر سے پھر دوپٹہ ہے، رسی ہے، اٹھا کے پھینک دو۔ اسی طرح یاد رکھیے انسان گناہوں کی زندگی میں ایسے ہی جاتا ہے۔ کبھی آپ سوچیے، کئی ایسے لوگ میرے ذہنوں میں آ جاتے ہیں کہ جب نئے نئے اپنے ملکوں سے آتے ہیں تو کس طرح کے آتے ہیں۔ چند دن پہلے کسی سے میری بات ہو رہی تھی، خود ہی بات انہوں نے اپنی میں بتا دیا، کہنے لگی کہ آپ کو تو میں پاکستان میں نکاب کرتی تھی، تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، پھر خود ہی کہنے لگی اب میں نہیں کرتی۔ میں نے کہا کہا ہے خود، تو کیا میں اس کی وجہ پوچھ سکتی ہوں؟ کہتی یہاں محسوس ہی نہیں ہوتا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں نے کہا آپ کو پتا ہے اگلا لمحہ کیا ہوگا؟ ابھی آپ نے نکاب اتارا ہے نا، پھر آپ اسکارف اتاریں گی، پھر آہستہ آہستہ آپ کو ابایا بھی، کہہ رہی ابایا بھی نہیں پہنتی، یا ویسی لمبی لمبی جیکٹ ہم پہن لیتے ہیں۔ میں نے کہا آپ کو پتا آئندہ اگلے دنوں میں کیا ہوگا؟ ابھی نئی نہیں آئی ہیں وہ پاکستان سے جن سے بات ہوئی۔ میں ان کے لیے کچھ نہیں کہتی، لیکن حقیقت ہے کہ جب ہم ہلکا سا سرکتے ہیں نا، ود لو تدخنوا فیدخنون، جو اللہ کو چھوڑ دے، جو اپنے کلچر کو چھوڑ دے، جو اپنے رسم و رواج کو چھوڑ دے، اپنی روایات کو چھوڑ دے، ان کو کچھ نہیں ملتا۔ میں نے چند دن پہلے کہیں ایک چیز پڑھی، اور میں نے کل کی بھی کلاس میں شیئر کی، کہ دنیا کے کچھ ایسے ایک دو مسلم ملک ہیں کہ جنہوں نے چائنیز اور اٹیلین کھانوں کا بائیکاٹ کر دیا، انہوں نے سارے وہ ریسٹورنٹ بند کرا دیے کہ اٹھاؤ اپنے کھانے لے جاؤ اپنے واپس۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ ان کھانوں کا اتنا رواج ہو رہا ہے کہ ہمارے جو نیشنل فوڈز ہیں لوگ اس سے پیچھے ہوتے جا رہے ہیں، ہمیں نہیں کھلانا چائنیز فوڈ، وہ ہمارا فوڈ نہیں کھا رہے، ان کی سب برتن نکلوا دیے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں ہمیں اپنے کلچر کو بچانا ہے۔ میں سوچتی لوگ اپنا کلچر، اپنا کھانا بچانے کے لیے غیر مسلموں کے کھانے نکال دیں، تو ہمارا تو اسلام بھی جا رہا ہے، ہمارا تو سب کچھ جاتا ہے، پھر ہم کہتے ہیں ہمارے پاس سب کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا وعدہ بتا دیتا ہے، اگر اس طرح کی زندگی بسر کرو گے تو نتیجہ کیا؟ وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا ہی حسبہم ولعنہم اللہ ولہم عذاب مقیم۔ ایسے لگتا ہے ایک لسٹ ہے، اللہ تعالیٰ چیک لسٹ، جیسے پولیس مین کہتا ہے نا یہ جرم کیا تو اس کی یہ سزا، یہ سزا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان منافق مردوں اور عورتوں اور کافروں کے لیے اللہ نے آتش دوزخ کا وعدہ کیا ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہی ان کے لیے موزوں ہے، ان پر اللہ کی پھٹکار ہے، اور ان پر قائم رہنے والا عذاب ہے۔ فالذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوا، تم لوگوں کے رنگ ڈھنگ تو وہی ہیں جو تم سے پہلے لوگوں کے تھے، وہ تم سے زیادہ زور آور اور تم سے زیادہ بڑھ کر مال اور اولاد والے تھے، پھر انہوں نے دنیا میں اپنے حصے کے مزے لوٹ لیے، اور تم نے بھی تو اپنے حصے کے مزے اسی طرح لوٹے جس طرح انہوں نے لوٹے تھے، اور ویسی ہی بحثوں میں تم بھی پڑے جیسی بحثوں میں وہ پڑے تھے۔ سو ان کا انجام یہ ہوا کہ دنیا اور آخرت میں ان کا سب کیا دھرا ضائع ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کا سب ضائع کر دیا، اور وہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں، بینک کرپٹ ہیں، یہ ہے انجام۔ کتنا انسان مان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم کس کھیت کی مولی ہو؟ نمرود کو دیکھو، شداد کو دیکھو، فرعون کو دیکھو، آج کوئی ان کا فالوور ملتا ہے؟ کہاں اشد منکم قوا، تم کیا بڑے بن جاؤ گے؟ کیا ان لوگوں کو اپنے پہلوں کی تاریخ نہیں پہنچی؟ نوح کی قوم، عاد، سمود، ابراہیم کی قوم، مدین کے لوگ، اور وہ بستیاں جن کو الٹا دیا گیا، یعنی قوم لوط کی طرف اشارہ ہے۔ کیا کیا تھا انہوں نے؟ ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، پھر یہ اللہ کا کام نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، مگر وہ آپ ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ کیسے؟ اللہ نبیوں کو بھیجتا تھا، پیغام دیتا تھا، لوگ ہی اس سے فائدہ نہ اٹھائیں تو کیا بنے، پھر کیا فائدہ ہوگا؟ آپ دیکھیے کہ ہم نعمتوں کی کتنی ناقدری کرتے ہیں نا، جو نعمت ہمیں مل جاتی ہے یا جو نعمت ہم خود لے لیتے ہیں، پھر بعد میں ہم اس کے تقاضے پورے نہیں کر پاتے۔ قوم سموت نے اونٹنی مانگی، پھر اس اونٹنی کے تقاضے پورے نہ کر سکے تو اس کی کنچے کاٹ ڈالی۔ اللہ ایسی قوموں کو نیست و نابود کر دیتا ہے۔ جتنی قومیں تھیں ان کے اندر ایک مشترک بات تھی، اور وہ کیا تھی؟ کہ وہ ناشکری قومیں تھیں، انہوں نے اللہ کے نبیوں کی قدر نہ کی، اللہ کے پیغام کی قدر نہ کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو الٹ پلٹ کے رکھ دیا۔ یہاں پہ منافقین کا ٹاپک پورا ہو کے اب آگے ایمان والوں کی باتیں ہیں، بڑی خوبصورت آیتیں ہیں۔ دل میں دعا کرتے جائیں، اور ہر اس بندے کو یہاں لیجئے جس کے لیے آپ کے دل میں بغض ہے، کینہ ہے، دوسروں کو سوچئے، کیونکہ ہمارا حال ہے منافق کا لفظ ہوگا تو فوراً سسرال کو سوچ لیتے ہیں، اور دوستوں کو اور رشتہ داروں کو، اور مومن کا ہے تو اپنا اور میکے والوں کا نام لکھ لیتے ہیں، حالانکہ اللہ کو حقیقت پتہ ہے۔ کون؟ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ. مومن مرد اور مومن عورتیں یہ سب ایک دوسرے کے رفیق ہیں. کیا کرتے ہیں؟ 1 2 3 کر کے آپ چیک لسٹ بنا سکتے ہیں. بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. خود سے پوچھئے. نماز قائم کرتے ہیں. خود سے پوچھتے ہیں کیا نماز پڑھتی ہوں کہ قائم کرتی ہوں. زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. زکوٰۃ کی بات جہاں آئی تو زکوٰۃ کا معاملہ بھی بڑا سنجیدہ ہے. سورۃ توبہ میں 2 بار زکوٰۃ کا موضوع آ رہا ہے. کیوں آ رہا ہے؟ اس لیے کہ یہ فرض میں سے ہے. ہم عورتیں اگر اپنے مال کی اپنی چیزوں کی زکوٰۃ نہیں دیتی تو آپ سوچئے کہ مرد ہمارے ذمہ دار نہیں ہے. ہمیں خود اس کا جواب دینا پڑے گا. اتنے کام کر لو تو پھر کیا ہوگا؟ یہ ہیں وہ لوگ جن پر اللہ کی رحمت ہوگی, جن پر اللہ کی رحمت نازل ہو کر رہے گی, اور یقیناً اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے. وعد اللہ المومنین والمومنات, وعدہ کیا اللہ نے مومن مردوں اور عورتوں سے کہ ان کو ایسے باغ دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. ان سدا بہار باغوں میں ان کے لیے پاکیزہ قیام گاہیں ہوں گی اور سب سے بڑھ کے رضوان من اللہ اکبر, اللہ کی رضا مندی, اللہ کی خوشنودی ان کو حاصل ہوگی. ذالک هو الفوز العظیم, اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. کون فائدے میں رہا؟ 4 دن کی دنیا کی مشکلیں ہیں نا, لیکن اللہ کی رضا. اللہ راضی تو رب راضی تو بندہ راضی. اللہ راضی ہوگا نا تو سب کو آپ سے راضی کر دے گا, اور اگر اللہ آپ سے ناراض ہے تو دنیا والوں کو آپ کبھی خوش نہیں کر سکتے. اسی لیے جتنی محنت دوسروں کو خوش کرنے کی کرتے ہیں اتنی اللہ کو خوش کرنے کی کر لیں. آپ دیکھیے ہمارا کتنا وقت جو ہے وہ صرف لوگوں کو خوش کرنے میں گزرتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہی پیپل پلیزر ہیں, لوگ مجھ سے خوش ہو جائیں. خوف ہے تو لوگوں کا, امید ہے تو لوگوں کی, لوگ کیا کہیں گے. ہم تو ان سے بھی ڈرتے ہیں یا ان کو بھی خوش رکھتے ہیں جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں. مثال ہے کہ آپ دیکھیے کہ میں یہاں سے نکل کے باہر شاپنگ کے لیے جاتی ہوں یا مجھے گروسری خریدنی ہے, وہاں جتنے بھی لوگ مجھے گھر سے نکلنے تک ملیں گے, کیا ان غیر مسلم ملکوں میں رہتے ہوئے کوئی ایک بھی ہمارے جاننے والا ہوتا ہے؟ چلے کوئی رشتہ دار ہے ہمارا, کوئی بھی نہیں. لیکن ہم کس سوچ کے ساتھ نکلتے ہیں؟ ہم گھر سے نکلنے سے لے کے وہاں تک ہر وقت کانشیس کیا ہوتے ہیں, لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں, لوگ کیا کہیں گے, یہ پینڈو لگ رہی ہے, یہ اسٹوبٹ لگ رہی ہے, یہ پاکستانی لگ رہی ہے, یہ فلاں لگ رہی ہے. یہ بات میں اس لیے کہتی ہوں کہ ایک دفعہ بچیوں سے میں نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ ہم مسجد میں جائیں تو ہم ابایا پہن سکتے ہیں, حجاب پہنتے ہیں, کوئی بات نہیں ہوتی, لیکن ہم پبلک پلیسز پہ نہیں پہن سکتے. ابھی ہم مالز میں جا کے نہیں پہن سکتے, ٹرینوں تک بھی کچھ پہننے لگ گئیں, کچھ بسوں میں بھی, لیکن ہوا کے کہ جہاں وہ چمکتے ہوئے چہروں اور بال کھولے اور جسم کھولے ہوئے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو ان کو خود بہت کمپلیکس ہوتا ہے کہ آپ کے ہیں. یقین کریں آپ اس وقت مجھے جو بھی صاف کپڑوں میں دیکھ رہے ہوں گے نا, آپ باہر جانے کا میرا حلیہ, میرا جوتا اگر آپ دیکھ لیں نا, کئی لوگ ایسے ہیں جو میرے ساتھ جاتے ہیں ان کو شرم آتی, کہتے ہیں یہ جوتا آپ پہنتی ہیں, وہ لا کے آپ کو جوتے دے دیتے ہیں کہ آپ پہن لیں جوتا, شاید وہ سمجھتے میرے پاس پیسے نہیں ہیں. ایسا نہیں ہے, میں اپنی انا کو مارتی ہوں, مجھے کیا لگے, میں کیا کروں. یقین کریں میں آپ کو سچ بتا رہی ہوں کہ میں نے سردیوں میں جان کے جوتا نہیں لیا. پچھلے سال جوتا جو پہننا ہوا تھا توڑا ٹوٹ گیا تھا تو یہ سوچ کے دے دیا کہ اگلی دفعہ لے لوں گی. میں نے پوری سردیاں خود کو خود ٹالا, اور اس بات کو سن کے آپ میں سے نہ کوئی میرے لیے جوتا لے آئے. لیکن میں آپ کو سچ بتا رہی ہوں کہ میرے شوہر کو ان کے دوست نے کوئی جوتا دیا تھا, یہ نہیں پہن رہے تھے, ان کو تنگ تھا, میں نے سردیوں میں وہ پہن لیا. ابھی بھی دیکھ لیں باہر ہوگا, آئی ڈونٹ کیئر, میری بلا سے, مجھے نہیں, میری جوتی ٹوٹی ہے, نیچے سے پانی لگتا ہے جوتوں کو, مجھے کیا لگے, آپ کو کیا لگے میرے حال سے. آپ دیکھیں لوگ پھٹے ہوئے کپڑے پہن کے, پھٹی پینٹیں پہن کے نکلتے, میں کہتی ان کو نہیں شرم آ رہی, تو میرا تو کسی کو نہیں دکھ رہا, ہو کیئرس. لیکن جب ہم لوگوں کے لیے جیتے ہیں تو باہر نکلتے ہوئے پہلے وہ جوتے نکالتے ہیں کہ جو باہر چاہے پاؤں مڑ جائے لیکن ہمیں میچنگ پہننا ہے. میں نہیں کہتی مجھے فالو کریں, لیکن میں دکھ کے ساتھ یہ بات کرتی ہوں کہ ہم بعض دفعہ ان لوگوں کی نظروں میں بڑا بننے کے لیے اپنے رب کو ناراض کر لیتے ہیں, جو خوش ہو بھی گئے تو ہمیں کیا دیں گے. میں بہت اچھا بایا پہن لوں, میں بہت اچھا پہن لوں, ابھی بھی بایا اتارا ہے, آپ دیکھ لیں کہ میرا حال ہے, پچھلے 8 سال سے پہنتی ہوں, باہر وہی پہنتی ہوں, کھلا ہے, ڈھیلا ہے, کئی جگہ سے جل پھل گیا, میری بلا سے, کوئی میں فقیر نہیں ہوں, میرے پاس پیسے بھی ہیں, میرے پاس کپڑے بھی بہت ہیں, سب کچھ ہے. لیکن میں کہتی ہوں میں کیوں کسی کے لیے اپنے آپ کو رکھوں کہ جس نے مجھے کچھ نہیں دینا. زندگی کے ایک اصول یاد رکھیں, ان کو خوش کریں جن سے آپ کا کوئی کام ہے, جن سے آپ کو کچھ ملنا ہے. شوہر کو خوش کریں, گھر والوں کو خوش کریں, آپ اپنے دوستوں کو خوش کریں, آپ ان کے گھر جاتے ہیں بہترین کپڑے پہنے, یا آپ ان کو عزت دیتے ہیں, آپ اسکول میں آتے ہیں آپ صاف ستھرا ڈریس پہنے, آپ کا ڈریس اچھا ہو, آپ کا یونیفارم اچھا ہو, جہاں سے آپ کا کچھ مفاد ہے وہاں کریں, باقی آپ ایئرپورٹ میں ہیں یا آپ پبلک پارک میں, ہو کیئرس. بھائی تم مجھے دیکھ کے ہنستے ہو تو میں تمہیں دیکھ کے روتی ہوں, مجھے تو تم پہ یہ رونا آتا ہے کہ تمہارا تو جسم کہیں سے چھپا ہوا نہیں ہے تو تمہیں میرا کیوں برا لگ رہا ہے. تو انشاءاللہ جب آپ خود کے ساتھ اس طرح کمٹمنٹ کریں گے تو بہت سارے ہمارے مسئلے اسی سے ختم ہو جائیں گے. इसके बाद अब अल्लाह ताला मामला करना सिखाते हैं। या अय्युहन नबी युजाहिदिल कुफार वल मुनाफिकीन वग़लुज़ अलैहिम, ऐ नबी कुफार और मुनाफिकीन दोनों का पूरी कुव्वत से मुकाबला करो और इनके साथ सख्ती से पेश आओ, क्योंकि इनका ठिकाना जहन्नम है और वो बहुत बुरा ठिकाना है। बड़ी ज़बरदस्त आयत है, हाईलाइट कर लीजिए कि इस आयत में कुफार के साथ साथ मुनाफिकों से भी सख्ती करने का अल्लाह के नबी को हुक्म दे दिया। क्योंकि देखिए, जब काम काफिरों और मुसलमानों के, चाहे वो अपने आप को मुसलमान कहें या मुनाफिकें, एक जैसे होंगे तो अंजाम भी एक होगा। अब अल्लाह के नबी ने सारी ज़िंदगी मुनाफिकों से कोई तलवार का जिहाद नहीं किया, ये भी हकीकत है। सारे गज़वात पढ़ ले तो फिर यहाँ मुनाफिकीन से सख्ती क्या मुराद है कि असूलों की सख्ती। आपने अब्दुल्ला बिन उबई को फिर ढील नहीं दी, फिर आपने लोगों को नहीं दी। जितना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जंगी हिकमत अमलियों से हम अपनी अमली ज़िंदगी में सीखते हैं, शायद उतना हम कहीं और सीखें। आपने फिर वाकई सख्ती की। बाद लोग सीरत पढ़ के गलत फहमियों का शिकार होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आजकल पढ़ा रही हूँ, कल मैंने गज़वा बनू मुस्तलक पढ़ाया, पूरी मुनाफिकों की रेशा दवानियाँ, उसमें सूरह तौबा के कई रेफरेंसेस मौजूद थे कि किस तरीके से फिर अल्लाह के नबी लोगों के लिए जम जाते थे। आप लोगों के लिए रोलिंग स्टोन नहीं थे कि जिसका दिल चाहा वो इधर आपको लुढ़का दे उधर लुढ़का दे, कभी काम नहीं होंगे। जब तक आप खुद अपनी बुनियादों पर नहीं खड़े होंगे, फिर हकीकत में आपने सख्ती की। ग़ज़वा तबूक वो जंग थी कि जिसके बाद मुनाफिक बिल्कुल बरहना हो गए थे। सोसाइटी में पता चल जाता था कि ये कौन जा रहा है कौन है, हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम नहीं बताए थे। हुज़ैफ़ा बिन यमान को बताए, जो उन्होंने अपने डेथ बेड पर बताए जाके, कि कहीं ऐसा ना कि अल्लाह के नबी की हदीस छुपाने के जुर्म में मारा जाऊँ। हज़रत उमर पूछा करते थे, हुज़ैफ़ा बस एक बात बता दो, मेरा नाम तो उस लिस्ट में नहीं है। 70 से ज़्यादा सहाबा कराम को इस बात का अंदेशा था कि शायद हम मुनाफिक हैं, जिसमें हज़रत आयशा तक मौजूद हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि खुद को निफाक से बरी मुनाफिक सोचता है, मोमिन हमेशा अपने ऊपर निफाक का शायबा रखता है। हम कहते नहीं, हम तो सैयदों की औलाद और हम तो फलां की नस्ल से, हम तो जद्दी पुश्ती आलिम और फाजिल हैं और वो फलां, वो सारी सोसाइटी मुनाफिक है। मत किसी को सोचिए, अपनी बात करें, इंशाल्लाह ताला अपने लिए रास्ते खुलेंगे। क्योंकि मुनाफिक का मामला क्या होता है कि अमल में पीछे और जब वक्त गुजर जाता है तो हाल क्या, यहलिफून बिल्लाही मा कालू, ये लोग खुदा की कस्में खा खा कर कहते हैं हमने वो बात नहीं कही, हालांकि उन्होंने ज़रूर वो काफिराना बातें कही हैं। ये वही बातें जो हम तफसील में डिटेल से देख चुके हैं कि कैसे इन्होंने तबूक के सफ़र पर जाने वालों के बाद महफिलें सजाईं। महफिलें सजाते थे, बगलें बजाते थे, रातों को बैठकें होती थी, कहते थे अच्छा खबर आने वाली है कि मोहम्मद मारे गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई अल्लाह के नबी के लीडरशिप क्वालिटीज़ पर बहस करता, देखो देखो लेके चल पड़े, देखो जज्बाती हो गए, ये देखो यूनिटी हाथी को मारने के लिए चली गई। अब जब ये बातें खुलती तो फिर कहते नहीं नहीं हमने तो ये किया ही नहीं। अल्लाह सुबहाना तआला कहते हैं यकीनन उन्होंने ये काफिराना बात कही है और इस्लाम लाने के बाद कुफर के मुर्तकिब हुए और उन्होंने वो कुछ करने का इरादा किया जिसको वो कर ना सके। अल्लाह के नबी के कत्ल की कोशिश की थी, उस पर यह वहम बिमालम या नालू की आयतें उतरी थी। तबूक से वापसी पर कुछ मुनाफिकों ने एक घाटी में खुद को छुपा कर अल्लाह के नबी पर हमला करना चाहा कि जब आप यहाँ से गुजरेंगे हम पीछे से मार देंगे। देखिए ये आस्तीन के सांप होते हैं, ऐसे लोगों का होना इससे बेहतर है कि ये ना हो। ये जाते हैं महफिलों में, साथ जाते थे अल्लाह के नबी के जंगों में भी, और वहाँ जाके और ही फितने पैदा करते थे। तो अल्लाह ताला कहते हैं वमा नकमु इल्ला अग्नाहुमुल्लाहु व रसूलुहु मिन फतली, इनको हुआ क्या, इनका सारा बस गुस्सा इसी बात पर है ना कि अल्लाह और उसके रसूल ने इनको गनी कर दिया। मदीना क्या था, एक छोटी सी बस्ती थी, कोई जानता भी नहीं था, लेकिन अल्लाह के नबी आए, यहाँ पर जंगें हुई, यहाँ हालात अच्छे बने, माले गनीमत आया, आज मदीना खुशहाल हो गया। क्या ये जुर्म है कि अल्लाह और उसके रसूल ने इनको अपने फजल से नवाज दिया, इसलिए ये ऐसी बातें करते हैं? कोई बात नहीं, वहीं यतूबू यको खैर अल्लाहुम, आज भी अगर तौबा कर लेते हैं तो इनके हक में बेहतर होगा, और नहीं करते तो फिर याद रखो वहीं यतवल्लो युअज़्ज़िबुहुमुल्लाह, और अगर फिर भी इन्होंने अपनी रविश को न छोड़ा तो अल्लाह ताला इनको ऐसी सजा देगा कि जिसको दुनिया और आखरत में ये याद भी रखेंगे। और हकीकत ये है कि दुनिया में इनका कोई हमायती और मददगार ना होगा। ये ऐसे लोग हैं कि जो अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग करते हैं। वमिन्हुम मन अहदल्लाह, और इनमें से बाज़ ऐसे हैं जिन्होंने अल्लाह से अहद किया था। इन आयात को हाईलाइट कीजिए, किसी सहाबी का नाम लिखे बगैर इसको अपने ऊपर लीजिए, क्योंकि बाज़ लोगों ने यहाँ हज़रत सलबा का नाम लिया जो कि दुरुस्त नहीं है, लेकिन हकीकत में देखा जाए तो ये किरदार हमें अपने अंदर ही दिखेगा। थोड़ा सा खुलासा कर देती हूँ ताकि फिर जब आयत सुने तो आपको पता चले कि जब पास नहीं होता कुछ तो कुछ लोग कहते हैं अल्लाह हमें दे ताकि हम इस्लाम के रास्ते में दें। हमारे पास जो असबाब होंगे ना, हम इस्लाम के लिए बहुत करेंगे, हम कुरान के लिए ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन जब अल्लाह दे देता है तो क्या हाल होता है, आइए देखते हैं। इनमें से बाज ऐसे भी हैं जिन्होंने अल्लाह से अहद किया था कि अगर इसने अपने फजल से हमको नवाजा तो हम खैरात करेंगे और सालेह बनकर रहेंगे, मगर जब अल्लाह ने इनको अपने फजल से दौलतमंद कर दिया। नोट कीजिएगा, दौलतमंद कैसे होता है? इंसान अपनी मेहनत अपनी कोशिश से नहीं, अल्लाह के फजल से होता है। जब अल्लाह ताला इनको अपने फजल से गनी कर देता है, सब कुछ दे देता है, तो वो बुखल पर उतर आए और अपने अहद से ऐसे फिरे कि इन्हें इसकी परवाह तक नहीं। नतीजा ये निकला कि इनकी इस बदहदी की वजह से जो उन्होंने अल्लाह के साथ की और उस झूठ की वजह से जो वो बोलते रहे, अल्लाह ने इनके दिलों में निफाक बिठा दिया, जो इनके जो क्यामत के दिन या अल्लाह से मुलाकात के दिन तक इनका पीछा न छोड़ेगा। अल्लाह अकबर। क्यों, वजह क्या है? कि ये लोग झूठे थे, ये लोग झूठ बोलते थे। यहाँ आप देखिए कि इन बातों पे ज़रा गौर करके देखें, हम में से तो नहीं है कोई ऐसा, बस मेरे हालात ठीक हो जाएं फिर देखें मैं क्या करता हूँ, बस एक दफ़ा अल्लाह मुझे बच्चा दे दे फिर देखो मैं उसकी कैसी तरबियत करता हूँ, अल्लाह मुझे इल्म दे दे फिर देखो मैं उसको कैसे फैलाता हूँ। हम सब कितने तन्हाइयों में बैठ के वादे करते हैं, खुद से वादे करते हैं, खुद ही तोड़ देते हैं। सबसे आसान है खुद से किया हुआ वादा तोड़ना, वजह क्या है कि कोई पूछने वाला जो नहीं। दूसरे से वादा करेंगे ना, ऐन वक्त पे अगला आके आपसे तकाजा कर लेगा, जी आपने कहा था अब करिए, लेकिन सबसे ज़्यादा इंसान अपने से वादे तोड़ता है। और लिख लीजिए ये बात कि जो बंदा अपनी बात को नहीं निभा सकता, अपनी कमिटमेंट को नहीं निभा सकता, खुद से किए हुए वादे नहीं निभा सकता, वो कभी भी खुद से खुश नहीं होगा। इससे फिर डिप्रेशन होगा, इससे अपसेटनेस होगी, हमारी कई बीमारियां और परेशानियां उसकी वजह जो है वो काम की कसरत नहीं होती बल्कि उस काम को ठीक ना कर सकने का बोझ और मलाल होता। इसलिए हम सबको इस वाक्य को सुनकर इस आयत को पढ़कर दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें ऐसा ना करना, हम ऐसे बदहत ना हो कि अल्लाह से नियत करें किसी काम की और फिर ना कर सकें। और इसका नुकसान देखिए कि अल्लाह फिर यानी क्यामत तक के लिए निफाक दिल में रहता है। यकीन करें अगर आप इस आयत को ज़रा सा गौर से देखें ना, तो जब हम दीन से सीरियस नहीं होते ना, तो उसकी आखिर सज़ा ये मिलती है कि अल्लाह ताला फिर इंसान को अपने से दूर कर देता है, फिर तौबा की तौफीक नहीं होती। इंसान होने के नाते हम सब कमज़ोर हैं, बस आप देखिए कि हम सब क्लास ले रहे हैं ना, पढ़ रहे हैं, हम सब सीखने की कोशिश में, सिखाने की कोशिश में, हत्तुल वसा हम सब कोशिश करेंगे, अल्लाह ताला हमारी गलतियों को माफ़ कर देगा। हम में से कोई वादा नहीं करता, दावा नहीं करता कि हम बहुत परफेक्ट हैं और हम जो काम करें बहुत अच्छी तरह करें। हम नमाज़ पढ़ते हैं दिन में 5 बार, हम में से कोई दावा नहीं करता कि हमारी नमाज एक्सलेंट दर्जे की है, लेकिन बहरहाल कुछ नमाज है, कभी कमी कभी बेशी। लेकिन जब इंसान अल्लाह से वादा करके उसको तोड़ देता है ना, तो अल्लाह ताला उसे तौफीक छीन लेता है। सीरियस जब हम नहीं लेते तो अल्लाह ताला की तरफ से फिर पकड़ आती है। और यहाँ ये भी नोट कीजिए, बीमा कानू यकजीबोन, अल्लाह ने इसको झूठ कहा, ये झूठे लोग हैं। कौन से? जो अल्लाह के मामलात को सीरियस नहीं लेते। कॉल और फेल का इनका तजाद है। तबरानी की एक रिवायत है, यकीन करें लरस जाता है इंसान उसको पढ़ के, और जिसका खुलासा क्या है कि जिसके ज़िम्मे उम्मत मुस्लिमा के इज्तमाही काम हुए, यानी मुसलमानों का कोई इज्तमाही मुफाद था और किसी शख्स को उसकी जिम्मेदारी दे दी गई, लेकिन उसने उसको ना किया जैसा कि वो अपने कामों को करता है। हदीस के लफ्ज़ कुछ इस किस्म के हैं कि उसने उसमें ऐसा ना खुद को थकाया जैसा कि वो अपने कामों में थकता है, तो क्या उसके ऊपर? बहुत बढ़िया, मैं अपने यादाश्त से सुना रही हूँ, कहीं लिखी हुई है हमारी मीटिंग्स के एजेंडे में, वह हदीस भी है कि फिर अल्लाह ताला उसको पकड़ेगा। आप देखिए, हमारी एक मैचिंग लेनी हो ना कपड़े की, तो हम सारा बाजार घूमते हैं, कोई ज्वेलरी लेनी हो तो हमारा कितना गम है, लेकिन हम अल्लाह के कामों में उतना थकाते हैं जितना खुद अपने कामों में थकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें निफाक से बचा दे और अल्लाह ताला हमें इस झूठ से बचा दे जिसकी वजह से फिर अल्लाह ताला तौफीक तक छीन लेता है। अल्लाह ताला कहते हैं अलम यालम अन्नल्लाह यालम सिर्रहुम व नजवाहुम, क्या उन्होंने ये नहीं सोचा कि अल्लाह इनके छुपे हुए और ज़ाहरी बातें सब जानता है? अल्लाह तो इनकी सरगोशियों तक को जानता है और तमाम गैब की बातों से बाखबर है। वो खूब जानता है कि इन कंजूस दौलतमंदों को जो बरज़ा और रगबत देने वाले अहले ईमान की माली कुर्बानियों पर बातें छांटते हैं और इन लोगों का मजाक उड़ाते हैं जिनके पास अल्लाह के रास्ते में देने के लिए इसके सिवा कुछ नहीं कि वो अपने ऊपर मुशक्क़त बर्दाश्त करते हैं। यहाँ पे एक और मसला, जो खुद नहीं देता ना अल्लाह के रास्ते में, देने से मुराद पैसा नहीं होता, वक्त भी होता है, सेहत भी होती है, माल सब कुछ होता है, स्किल्स होती हैं, जज्बे होते हैं, तो वो दूसरों के भी फिर पाँव खींचता है, क्या हो गया तुम्हें, अब तुम हर रोज़ ये काम करती हो, अब तुम ये छोड़ नहीं देती। यकीन करें जिस तरह इंसान दूसरों के साथ अपने आप को असिमिलेट करने की कोशिश करता है ना, इसी तरह वो कहता है कि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। किसी से बात हो रही थी तो मैंने उन्हें कहा कि आप सोच लीजिए, अगर आप इसी तरह से इस चीज़ में ढीली ढाली रहीं तो ये काम आपसे लेके दूसरे को दे दिया जाएगा। अगर आप समझती हैं कि ये काम नहीं कर सकती तो आप थोड़ा सा लिख के दे दें कि अभी फ़िलहाल मैं ये काम नहीं कर सकती। तो उस पर उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, कहने लगी साजा ये बात कहने वाले तो मुझे बहुत सारे हैं कि तुम आप थोड़ी देर ज़रा छुट्टी ले लो स्कूल से और ये कर लो और तुम्हारे हालात नहीं ठीक हैं, लेकिन मैं अपने ऊपर लड़ रही हूँ कि नहीं मैंने छुट्टी ली तो मुझे पता मेरी छुट्टी हो जानी है। और हकीकत है आज आप वो कहते तुम रूठे तो हम छूटे वाली कैफियत है। अल्लाह का दीन कहाँ किसी के लिए इंतज़ार करता है। तो हकीकत यह है कि जो खुद नहीं करते वो दूसरों को भी नहीं करने देते, बातें करते हैं। कभी आप लोगों के जुमले सुने, क्या हो गया तुम्हें, क्या हो गया तुम्हारी शक्ल, क्या क्या हो गया तुम्हें, क्या हो गया ये है वो है, तो ऐसी बातों को अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं कि अल्लाह तआला इन मजाक उड़ाने वालों को, यानी वो लोग जो ऐसी बातें करते हैं जो अल्लाह के नबी और अल्लाह के रास्तों में आने वालों का मजाक उड़ाते हैं, अल्लाह तआला ऐसे लोगों का फिर मजाक उड़ाएगा। कैसे मजाक उड़ाएगा? अल्लाह तआला इन मजाक उड़ाने वालों का सा मजाक उड़ाता है और इनके लिए दर्दनाक सजा है। ए नबी, तुम ख्वाह ऐसे लोगों की माफ़ी की दरख्वास्त करो या ना करो, ये भी एक मसला था। पहले जंगों में पीछे रहते थे, फिर अल्लाह के नबी को कहते थे आके हमारे लिए अब इस्तग़फ़ार करें, हमारे लिए अल्लाह से माफ़ी मांगें, तो अल्लाह ताला कहते हैं आप करें या ना करें, अगर तुम 70 बार भी इनको माफ़ करने की दरख्वास्त करोगे तो अल्लाह इनको माफ़ नहीं करेगा। अब्दुल्ला बिन उबई का जनाजा पड़ा है और अल्लाह के नबी के पास उनका बेटा अब्दुल्ला आता है कि अल्लाह के नबी मेरे बाप की नमाज जनाजा पढ़ा दें। आपने कहा कि मैं ज़रूर पढ़ाऊँगा। यह आयत उतर गई। हज़रत उमर ने कहा अल्लाह के नबी आप उस मुनाफिक का जनाजा पढ़ा रहे हैं जिसने इस्लाम को इतना तकलीफ दी? आपने कहा हाँ, क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने मुझे मना नहीं किया। अल्लाह ने कहा कि 70 बार करोगे तो नहीं कबूल करूंगा, मैं तो 70 से ज्यादा करूंगा। सुबहान अल्लाह, ये होता है ईमान वाले का दिल, कभी किसी को ज़ाती ग्रज में नहीं रखता, दीन के नाम पे किसी को इस तरह से नहीं लेता कि उसकी अच्छी बात भी उसको बुरी लग जाए। और अल्लाह के नबी ने नमाज जनाजा पढ़ा दी। हज़रत उमर कहते ही रह गए अल्लाह के नबी आप इसकी नमाज जनाजा पढ़ा रहे हैं? तो कहा हाँ, मैं 70 से ज्यादा बार पढ़ूंगा, लेकिन फलें यग़फिर अल्लाहु लहुम। ये हाईलाइट कर लें, नबी के पढ़ाए हुए जनाजों ने भी अब्दुल्ला बिन उबई को फ़ायदा ना दिया। नबी की कमीज़ आपके कुर्ते में कफन दिया हुआ शख्स, उसको उससे फ़ायदा ना हुआ। अल्लाह के नबी ने अपना लुआब मुबारक उसकी मैयत पे लगाया था, नहीं फ़ायदा हुआ। वजह ज़ालिक बिअन्नहुम कफरू बिल्लाहि व रसूलिही, इसलिए कि इन्होंने अल्लाह के साथ और उसके रसूल के साथ कुफर किया, और अल्लाह फासिक लोगों को हिदायत नहीं देता। ये है असल बात। आप जमजम में भिगोकर कफन रख लें, या फूलों की पत्तियों के साथ रख लें, या कलमे से भरी हुई चादरें कब्र पर डाल दें, अमल काम आएगा। अंदर कब्र में क्या, ये ज्यादा अहम है कब्र के बाहर से। आप मुनाफिकों की बेवकूफियां दिखाई जा रही हैं, जिस बात पे उनको रोना चाहिए था उस पे हंस रहे हैं। कैसे? फरिहल मुखल्लफून बिमक़अदिहिम खिलाफ रसूलिल्लाह, जिन लोगों को पीछे रहने की इजाज़त दे दी गई थी वो अल्लाह के रसूल का साथ ना देने और घर बैठे रहने पर खुश हो गए। ये है रोने का मुकाम। जिस नेकी के छुटने पर रोना चाहिए था, ये उस पर खुशियाँ मना रहे थे, देखा अच्छा हुआ बच गए, चलो अच्छा नहीं लेके गए हमें, छुट्टी कर लेते हैं, मज़े से घर बैठेंगे, अब क्या तबूक तक जाएँ, फिर पैदल धूप गर्मी सर्दी। अल्लाह कह रहे हैं कि ये नेकी छुटती है तो मोमिन रोता है। एक दफ़ा एक शख्स रो रहे थे तो कहा किस पे रोवा? कहा कि आज फजर की सुन्नतें छुट गईं। इस तरह के हालात लोगों के दिखते हैं, लेकिन मुनाफिक की ये कलामत हमें यहाँ से पता चल गई कि नेकी के मौके से उसकी जान छुट गई तो शुक्र अटल गए, शुक्र है जान छुट गई मेरी, खुशियाँ मनाते हैं अपने पीछे रहने पर। और इनको ये गवारा ना हुआ कि अल्लाह की राह में जान और माल से जिहाद करें। उन्होंने लोगों से कहा, क्या कहा, इस जुमले को हाईलाइट करना चाहें तो कर लीजिए, ला तनफिरू फिल हर्री, इस सख्त गर्मी में ना निकलो। ये हैं हिम्मतें तोड़ने वाले जुमले, आप इसको कर लीजिए, इस बर्फ़ में ना निकलो, -20s में ना निकलो। लोग यही रहम खाते हैं ना, यही मोहब्बत का हक है ना उनका हमसे, नहीं नहीं आज ना ही जाओ तो अच्छा, सर्दी बहुत है, नहीं तुम्हें खांसी होने वाली है अब ना ही जाओ, तुम्हारी नाक बह रही है तुम ना ही जाओ। ऐसे तमाम लोगों को अल्लाह ताला ने कहा, कह दो कुल नारु जहन्नम अशद्दु हर्रन लौ कानू यफ़क़हून, इनसे कहो जहन्नम की आग इससे ज़्यादा गर्म है, काश इन्हें इसकी खबर होती, काश इनको खबर होती। पता ही कुछ नहीं ना वो जहन्नम कितनी सख्त है, और अगर पता लग जाए वो जहन्नम क्या है, वो आग क्या है, तो हाल क्या होता। फल यदहकू कलीलम वल यबकू कसीरम बिमा कानू यकसिबून, अब चाहिए कि ये लोग हंसना कम कर दें और रोएं ज़्यादा। ये जो हंसना है ना, इसको आप लिख लीजिए नीचे, फन, पार्टी, फंक्शन, दावत, खाने, मेहंदी, उपटन, यही है ना हंसी मजाक। आज अल्लाह कहते हैं कम करो और रो ज्यादा, क्यों? जजाम बीमा कानु यक्सिबून, इसलिए कि जो बदी ये कमाते हैं उसकी जजा ही ऐसी है कि इनके ऊपर इनको रोना चाहिए। आज देख लीजिए हंसने का कल्चर ज्यादा कि रोने का। आज कितने मौके, हर वीकेंड हमारे लिए कोई नई दावत तैयार है, नए मौके तैयार है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, लोगों जहन्नम की जो शिद्दत मुझे दिखती है या आखरत के जो हालात मैं जानता हूँ तुम्हें पता चल जाए तो तुम हंसना छोड़ दो। मालिक के बारे में आता है जो जहन्नम के दारोगा हैं कि उनको कभी किसी ने हंसते नहीं देखा। आप देखें कि हम बाहर निकले और रोड पर कोई ज़ख्मी शख्स पड़ा हो तो हमारी भी हंसी बंद हो जाएगी, और मालिक तो हर वक्त लोगों को जहन्नम में जलता देखेंगे, वो कैसे हंसेंगे? उनके चेहरे पर रोने की अलामतें। हमने कर क्या लिया है जिस पे हम खुशियाँ मनाएं, जिस पे हम फन मनाएं? अल्लाह की निगाहों में हमारा क्या मुकाम है? हम किस जगह खड़े हैं हमें नहीं पता। कहाँ ऐसे इंसान को अपने आप को सजाने और संवारने और अपनी छोटी सी खुशियों को इतना बड़ा करने की ज़रूरत है कि उस पर कितनी नमाजें कुर्बान हो जाएं, उस पर कितना दीन कुर्बान हो जाए? अगर इंसान अपना खसारा देखे ना तो वो इसमें बहुत ज़्यादा, कि किस तरह हमारी एक एक खुशी हमारी कितनी नेकियों को ज़ाया कर देती है। अब यहाँ से आगे अल्लाह के नबी के ग़ज़वे तबूक से वापसी के सफ़र की कहानी है। फ़ैन रजाक अल्लाहु इला तौइफत मिनहुम, और अगर अल्लाह आपको इस सफ़र से वापस ले आए, यानी जब कभी आप इस जिहाद से वापस आएंगे, वापस ले आए, और आइंदा इनमें से कोई गिरोह जिहाद के लिए निकलने की तुमसे इजाज़त मांगे तो साफ़ कह देना कि अब तुम मेरे साथ हरगिज़ नहीं चल सकते और ना तुम मेरी माइयत में किसी दुश्मन से लड़ सकते हो। क्यों? क्योंकि तुमने पहले पीछे रहने को पसंद किया, अब घर बैठने वालों के साथ ही बैठे रहो। यहाँ से पता चलता है कि नेकी का एक मौका होता है। तबुक का सफ़र मुश्किल था, लोगों ने इसमें अपने आप को पीछे कर लिया, कहा अब इसके बाद जब कोई मुश्किल मसले आएंगे जहाँ दौलत मिलेगी माल मिलेगी तो बिल्कुल भी आपने इनको साथ नहीं लेके जाना। याद रखिए जो कुर्बानियों का साथी नहीं है फिर वो इन आसानियों का साथी भी नहीं होगा। अल्लाह मौके जहाँ देता है कुछ लोगों को, इस तरह वहाँ फिर उनको बाद में उसकी खैर भी देता है। मुनाफिक का हाल क्या है कि मीठा मीठा मेरे लिए और कड़वा थूक दो। अल्लाह के रास्ते में जब तक कड़वी चीज़ भी मीठी ना लगे खुशी नहीं होगी आपको। इसके बाद फिर हतमी हुक्म आ गया कि अब आप किसी भी मुनाफिक की नमाज जनाजा नहीं पढ़ाएंगे। वला तुसल्ली अला अहद मिनहुम माता अबदन, और आइंदा इनमें से जो कोई मरे इसकी नमाज जनाजा भी तुम हरगिज़ न पढ़ना और न कभी इसकी कब्र पर खड़े होना, क्योंकि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के साथ कुफर किया है और वो इस हाल में मरे हैं कि वो फासिक हैं। ये है वो हतमी कानून जिसकी वजह से ज़िंदगी ज़िंदगी हम किसी भी काफिर के लिए भी दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह उसको हिदायत दे। मुनाफिक हमें नहीं पता कौन है, ये अल्लाह के नबियों को पता चलता था, तो मुसलमान के लिए तो हमेशा ही दुआ होगी, लेकिन जब कुफर के साथ किसी का ही खात्मा हो जाए फिर आप उसके लिए दुआ नहीं कर सकते। फिर बस अल्लाह के साथ उसका मामला छोड़ दे कि अल्लाह जाने और वो जाने। वला तुजिब कम वालुहुम व औलादुहुम, इनकी मालदारी और इनकी कसरत औलाद तुमको धोखे में ना डाले। अल्लाह ने तो इरादा कर लिया है कि इस माल और औलाद के ज़रिए से इनको इसी दुनिया में सजा दे और इनकी जानें इस हाल में निकलें कि वो काफिर हों। यह है अल्लाह का इंतकाम, इसको भी हाईलाइट कर लीजिए। अल्लाह फिर ऐसे लोगों को मरते दम तक हिदायत की तौफीक ही नहीं देता। व इज़ा उन्ज़िलत सूरतुन आमिनु बिल्लाहि, और जब कोई सूरत इस मजमून की नाजिल हुई कि अल्लाह को मानो और उसके रसूल के साथ मिलकर जिहाद करो, तो तुमने देखा कि जो लोग इनमें से कुदरत रखते थे वही तुमसे दरख्वास्तें करने लग गए कि इनको जिहाद की शिरकत से मुआफ़ रखा जाए, और उन्होंने कहा कि हमें छोड़ दीजिए कि हम बैठने वालों के साथ रहें। इन लोगों ने घर बैठने वालियों में शामिल होना पसंद किया और इनके दिलों पर ठप्पा लगा दिया गया, इसलिए कि इनकी समझ में अब कुछ भी नहीं आता। हाईलाइट कर लीजिए, अल्लाह कहते हैं वो लोग आपसे उज़र की बातें कर रहे हैं जिनके पास असबाब भी बहुत सारे हैं। एक सहाबी थे अबू खैसमा, ग़ज़वे तबूक के लिए जब काफिला निकला तो इनकी नीयत तो थी लेकिन टालते रहे, और हकीकत है कि काम धंधे में जब इंसान का दिल लगा होता है तो नेकी के कई मौके टालता है, हत्ता कि नमाज भी टाल टाल के पढ़ता है। कहते हैं कि मैं तैयारी में था, सोच भी रहा था लेकिन टालता रहा, अच्छा चलता जाऊँ, इतने में काफिला चला गया। अल्लाह के नबी सुबह सुबह कूच कर गए। दोपहर हुई, मैं अपने खेतों में काम कर रहा था, मेरी बीवी आई, गरम गरम खाना उसने मेरे सामने रखा, फर्श पे पानी डाल के उसको ठंडा किया। दरख्त में साए में मैं बैठा, अब मेरे पास बीवी भी है, ठंडा पानी भी है और खाना भी है, और मैं लुकमा तोड़ने लगा हूँ। और मुझे एकदम ख्याल आया कि अबू खैसमा, तू तो इतने मज़े में है, और अल्लाह का नबी पता नहीं इस वक्त किस हाल में होगा, उन्होंने खाया पिए कि नहीं, उनके पास क्या है। कहते हैं वो लुकमा फिर मेरे पेट में नहीं गया। मैंने उसको वापस फेंका, बीवी से कहा मेरा घोड़ा तैयार करो, और मैं घोड़े को एड़ लगाता हुआ काफले की सिमत पे चल पड़ा। थोड़ी देर में काफले के पास पहुंचा, दूर से मट्टी उड़ती हुई दिखी। अल्लाह के नबी ने कहा अल्लाह करे ये अबू खैसमा हो, और कहते हैं कि जब पास गए तो वही थे। अल्लाह के नबी की नज़रें लगी हुई थी, उन्होंने फ़ौरन अपने आप को उस काफले में कहा कि अल्लाह के नबी मैं बर्दाश्त ही नहीं कर सका कि आप तो इतनी मुश्किल से हैं दीन के लिए और मैं अपने घर में आराम में बैठा रहूं। इसीलिए अल्लाह सुबहान तआला ऐसे लोगों की तारीफ़ें भी फरमाते हैं कि मुनाफिकों के सिवा कुछ लोग कौन हैं, लाकिन रसूल वल्लज़ीना आमनू माहू जाहदू बि अमवालिहिम व अनफुसिहिम। बखिलाफ इसके रसूल ने और इन लोगों ने जो रसूल के साथ ईमान लाए थे, नोट कीजिएगा कि ईमान की वजह से रसूल का साथ नसीब हो गया, इन्होंने अपनी जान और माल से जिहाद किया और अब सारी भलाइयाँ इन्हीं के लिए हैं और वही फलाह पाने वाले हैं। अल्लाह ने इनके लिए ऐसे बाग तैयार कर रखे जिनके नीचे नहरें बह रही हैं और इनमें वो हमेशा रहेंगे। ये है अजीमुशान कामयाबी, अल्लाह हमें भी ये दे दे। दुआ कीजिए कि हम सच्चे हो जाएं। जन्नत मांगनी है ना तो सच्चाई मांगिए, और सच्चाई क्या है कि अल्लाह के रास्तों में संजीदा होना। इसके बाद यहाँ से कुछ बातें बदुओं के नाते से आ रही हैं जिसका आगे अगले पारे में भी तस्कर आएगा। वजाल मुअज़्ज़िरून मिन अल आराब, बदवी अरबों में से भी बहुत से लोग आए जिन्होंने उजर किए ताकि इन्हें भी पीछे रह जाने की इजाज़त दी जाए। इसी तरह बैठ रहे वो लोग जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल से ईमान का झूठा अहद किया था। इन बदवियों में से जिन जिन लोगों ने कुफर का तरीका इख्तियार किया है, अन करीब वो दर्दनाक सजा पाएंगे, अजाबुन अलीम की बात है। हाँ, लेकिन सब लोग ऐसे नहीं हैं। लैस अलद दुआफाए वला अलल मर्दा वला अलल लजीन ला यजिदून मा युनफिकून हरज। ज़ईफ़ और बीमार लोग और वो लोग जो शिरकत जिहाद के लिए नहीं रह पाते, जो शिरकत जिहाद के लिए राह नहीं पाते, अगर पीछे रह जाएं तो कोई हरज नहीं। यहाँ से पता चलता है कि अल्लाह को बंदों के हाल पता है, बंदे को बंदे का हाल नहीं पता होता, अल्लाह को पता होता है। इसलिए हर वो बंदा जो अपने उज़र की वजह से दीन से पीछे रहता है, उसको पहले तो चेक करना चाहिए कि क्या मेरा उज़र वाकई इतना बड़ा था, और अगर दीन की वजह दुनिया का मामला होता तो भी मेरा यही फैसला होता, और अगर सब सच है तो फिर फिक्र ना कीजिए, अल्लाह ताला को दिलों का हाल पता है। जबकि वो खलूस दिल के साथ अल्लाह और रसूल के वफ़ादार हों, ऐसे मुहसिनीन को अल्लाह ताला नहीं पकड़ेगा, क्योंकि अल्लाह ताला बख्शने वाला और मेहरबान है, और ना ही उनको पकड़ेगा किनको। बड़ी खूबसूरत आयत पे पारे का इख्तिताम है। वला अलल लजीन इज़ा मा तौकलि तहमिलहुम कुलत लाजितु मा उहमिलुकुम अलै, और ना ही उन लोगों पर कोई पकड़ है कि जो आपके पास इसलिए आते हैं कि आप उनको सवारियाँ मुहैया करें, और आप उनको ये कह देते हैं कि मेरे पास तो सवारियां हैं ही नहीं, और वो मजबूरन इस हाल में वापस जाते हैं कि आयुनहुम तफीदु मिन दमई खज़ना, कि उनकी आंखें गम की शिद्दत की वजह से बहने लगती हैं, कि वो अपने खर्च पर शरीक जिहाद होने की कुदरत नहीं पाते, असबाब ही नहीं है, जगह ही नहीं मिली उनको, इसलिए वापस जाना पड़ा उनको। ऐसे लोगों को अल्लाह नहीं पकड़ेगा। हाँ, पकड़ तो सिर्फ उनकी है। इन्नमा सबीलु अलल लज़ीना यस्ताज़िनूनक, शिर्क इन्हीं लोगों पर एतराज़ है जो मालदार हैं फिर भी तुमसे दरख्वास्तें करते हैं कि इनको शिरकत जिहाद से माफ़ रखा जाए। इन्होंने घर बैठने वालियों में शामिल होना पसंद किया, अल्लाह ने इनके दिलों पर ठप्पा लगा दिया, इसलिए कि अब ये कुछ नहीं जानते कि अल्लाह के हाँ इनकी इस रविश का क्या नतीजा निकलने वाला है। यहाँ से पता चलता है कि इंसान उज़र होते हुए काम करने की तलब रखता है, अल्लाह ताला उनको माफ़ कर देगा, लेकिन सारे असबाब और सारे उज़र होने के बावजूद जब हम नेकी नहीं करते तो फिर अल्लाह की पकड़ आती है। हम अपने दिल का जायज़ा लें कि हम दीन के कामों में कहाँ पे आते हैं। हम सिर्फ दूसरों के कहने पे काम करते हैं, यस, हमारे अपने दिल में भी ये तड़प मौजूद है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमारे दिलों को निफाक और कीने से महफूज रखे। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।